गीता की पांचवी अध्याय के 24वें श्लोक में योगत सुकुंतला राम है तथा अंतर ज्योति रेवय है से योगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म भूतो दिगच्छति। ब्रह्म भूत योगी ब्रह्म के स्वरूप के नहीं जिनकि एक ही भाव से स्थिति है, जैसे अज्ञानी की अपने देह में स्थिति है, जो कोई आत्मा मानता है ऐसे जो ब्रह्म को आत्मा समझता है, ब्रह्म जिनकी आत्मबुद्धि होगी है, मैं ब्रह्म हूं ऐसा जिनको अनुभव हो गया है, निश्चय हो गया है, वह तो पुरुष अंत अंत मैंने अपने आत्मा में अपने ब्रह्म स्वरूप अपनी आत्मा में सुख अनुभव करता है। अंतराराम आत्मा में आराम करता है यानी क्रीड़ा करता है, आत्माराम है ब्रह्म रूप आत्मा का जो मनन करना आनंद का अनुभव करना वो ही एक प्रकार से ब्रह्म में रमन करना है। अंत ज्योति ब्रह्म रूप हुआ, ब्रह्म कोई ज्योति रूप से अनुभव करता है वो अंत ज्योति अंत मन आत्मा आत्म ज्योति वाला ब्रह्म ज्योति वाला ब्रह्म रूप अपनी आत्मा में उस ब्रह्म को ज्योति स्वरूप से चिन्मय स्वरूप से ज्ञान स्वरूप से जो अनुभव करे वो अंत ज्योति ऐसा ब्रह्म भूत पुरुष निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। शुद्ध जो विज्ञान धन निर्विशेष जो ब्रह्म उसकी प्राप्ति हो जाती है। साधन काल के मां जो ब्रह्म का स्वरूप है वो तो बुद्धि से मिला हुआ है और वो वास्तु के मां जो ब्रह्म का स्वरूप है उसका फल है। जैसे गीता की 13वें अध्याय के 12वें श्लोक में बताया कि ज्ञेयं यत् तत्पर वक्ष्यामि यज्ञात् अमृतमस्मृति ज्ञेयं यत् यत् ज्ञेयं तत्पर वक्ष्यामि जो जानने योग ब्रह्म का स्वरूप है, जो जानने में आ सके ऐसा जो ब्रह्म का स्वरूप है तत्पर वक्ष्यामि उसको मैं तुझको कहूंगा। और जिस ज्ञात हुआ और जिसको तू जान करके अमृत को प्राप्त हो जाए तो वो अमृत के नाम से क्या वो प्रापणीय ब्रह्म का स्वरूप है, फल स्वरूप है, वो साधन काल का ब्रह्म का स्वरूप है। जो बुद्धि ग्राह्य बुद्धि के ग्रहण करने में आ सके, बुद्धि जहां तक पहुंच सके, और फल रूप जो ब्रह्म का स्वरूप है वहां बुद्धि नहीं पहुंच सकती। इसी प्रकार से थी यहां गीता की 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में जो आपको बतलाया गया, ये अंतकरण के भाव से थी भगवान के साथ के बीच में जो किस प्रकार से चेष्टा करनी ये बतलाया गया। और इसका फल स्वरूप जो भगवान का साक्षात्कार है वो आगे के श्लोक तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं हृदां बुद्धि योगंतं येन नामोपयन्ति ते। तेषां माने पूर्व में जिनके लक्षण बतलाए भगवान के भक्त के उन भक्तों की बात है। तेषां माने उन भक्तों को कैसे कि सतत युक्तानां निरंतर जो मेरे में लगे हुए हैं और प्रीति पूर्वक जो मुझको हंसते हैं उन भक्तों को मैं वह बुद्धि योग यानी मेरा यथार्थ ज्ञान देता हूं कि जिस ज्ञान के द्वारा उसको प्राप्त हो जाता है। मेरा जो साकार निराकार सगुण निर्गुण जैसा मेरा जो स्वरूप है उसको यथार्थ रूप से जान करके उसको प्राप्त हो जाता है। ये शब्दों का भावयक है कि पूर्व में जो बताया कि जो नित्य निरंतर मेरे में रमण करते हैं मन बुद्धि और इंद्रियों से, या मन बुद्धि और इंद्रियों सब आप मानसिक है, प्रत्यक्ष में तो भगवान दर्शन अभी दिए नहीं तो रमण किस में करे। भक्त अपने मन से ऐसा करे, इस प्रकार से थी जो साधन करने वाले हैं यानी मुझ में जो रमन करते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं संतोष लाभ करते हैं और वो भी निरंतर नित्यं तुषन्ति च रमन्ति च, नित्य मेरे में रमन करते हैं और संतोष लाभ करते हैं, तो तेषां सतति युक्तानां उन निरंतर जो मेरे में लगे हुए हैं, निरंतर जो मेरे में लगे हुए हैं उन्हें प्रीति पूर्वक भजने वालों को वो भजना एक प्रेम पूर्वक है। वहां भक्त का अनन और विशुद्ध प्रेम है, ऐसे प्रेम को ये भक्ति कोई भजना है। ये मन बुद्धि और इंद्रियों से भगवान का जो दर्शन है भाषण है स्पर्श है वार्तालाप है चिंतन है वो इस प्रकार से थी जो भजते हैं मन क्रीड़ा करते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं वहां भगवान का जो दर्शन भाषण स्पर्श वार्तालाप है सब रस में है अमृत में है आनंद में है प्रेम में है। भगवान के नाम का जो जप है वाणी के द्वारा वो अमृतमय है परम मधुर है, उनका नाम मधुर उनका रूप मधुर उन्हें प्रभु के सारे वस्त्र मधुर उनका दृष्टिपात सुमधुर भगवान का स्पर्श है सुमधुर भगवान को स्पर्श करना है सुमधुर भगवान को देखना मधुर और भगवान के द्वारा देखा जाए वो भी मधुर भगवान का चिंतन करना मधुर और भगवान भक्त का चिंतन करे वो भी भक्त के लिए मधुर। तो परस्पर के बीच के मां भगवान के साथ में मन बुद्धि इंद्रियों का जो संयोग है उससे भी परम मधुर है। ऐसे परम मधुर रस का पान करना और उससे आनंद होना संतोष होना वही टूषण। तो इस प्रकार से थी भगवान कहते हैं कि जो निरंतर मन बुद्धि इंद्रियों को लगा करके जो चेष्टा करता है और उसे उनको जो आनंद मिलता है उसे जो प्रसन्नता होती है रस आता है वो रसास्वाद का अनुभव करता है साधन काल के मां उसका फल है परमात्मा का यथार्थ ज्ञान और उस यथार्थ ज्ञान का फल है परमात्मा के यथार्थ स्वरूप की प्राप्ति। यथार्थ ज्ञान यह भगवान साकार निराकार सगुण निर्गुण रूप से किस तरह से आपने विराजमान हो रहे हैं और साकार से निराकार निराकार से साकार सगुण से निर्गुण निर्गुण से सगुण किस प्रकार से भगवान होते हैं इन सब विषय का जो तत्व और रहस्य पूर्णतः समझ जाता है वो है यथार्थ ज्ञान और उसका फल उस परमात्मा की प्राप्ति। सब प्रकार से परमात्मा की जो प्राप्ति है वो यथार्थ प्राप्ति ये उसका सुफल। साधन काल के वहां भगवान का आवाहन कर करके उनका जो दर्शन भाषण से परस वार्तालाप है वो सब मानसिक, और इस प्रकार के साधन करने से भगवान उसको जो यथार्थ ज्ञान यानी बुद्धि योग यथार्थ ज्ञान देते हैं, और उस ज्ञान का वो फल है कि परमात्मा की प्राप्ति। तो परमात्मा का जो प्रापणीय जो स्वरूप है यथार्थ जो प्राप्ति है वो बुद्धि से भी परे की चीज है, उसको कोई किसी प्रकार से बतला नहीं सकता। उसको कहीं भगवान ने कह दिया कि परम पद की प्राप्ति, कहीं कह दिया निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति, कहीं कह दिया अमृत की प्राप्ति, कहीं कह दिया परम धाम की प्राप्ति, कहीं कह दिया परम गति की प्राप्ति, कहीं अव्यक्त अक्षर की प्राप्ति, कहीं कह दिया मेरी प्राप्ति। तो प्रापणीय जो वस्तु वो एक ही, साधन काल के बीच के वहां तो भक्त अपने इच्छा के अनुसार भगवान का अनुभव करता है। अंतिम जो वास्तव के वहां जो भगवान की प्राप्ति होती है वो सबके लिए एक है। यही अनन भक्ति है और यही अनन प्रेम है, यही विशुद्ध प्रेम है, जिसकी बात मैं आपको इसी प्रसंग में बतलाई थी अनन भक्ति की, गीता की 11वीं अध्याय के 16 के श्लोक में भक्ता तो मनने अशक्य एवं विदो जो न ज्ञातु दर्शन सत्य न प्रवेश नीचे परम तप है, और इसका अर्थ भी आपको बतलाया था, किंतु अनन भक्ति का स्वरूप नहीं बतलाया, वो आगे के श्लोक में है, गीता की 11वीं अध्याय के 95 के श्लोक में, मत कर्म के मत परमो मत भक्त संवर्जित हो निर्वैर सर्वभूति ये सब मामी पांडव। हे पांडव, जो मेरे ही अर्थ कर्म करता है और जो मेरे ही प्राण है, मेरी शरण है, और मेरे में जिसका प्रेम है, मेरा भक्त है, और मेरे स्व अन संसार में किसी में जिसकी प्रीति नहीं, आसक्ति नहीं, और किसी में बैर भी नहीं, किसी प्राणी के साथ में बैर भी नहीं, हे पांडव पुत्र अर्जुन, वह मुझको प्राप्त होता है। ये शब्दार्थ मत कर्म कीर्ण का मतलब है कि जिसकी सारी चेष्टा मेरे लिए हो, जैसे एक लोभी आदमी रुपयों के वास्ते चेष्टा करता है, या उसकी सारी चेष्टा रुपयों के लिए होती है, जिसमें रुपयों की हानि ऐसी चेष्टा उसे हो ही नहीं सकती। तो रुपयों का जो अनन भक्त है उसकी चेष्टा रुपयों के लिए होती है, और भगवान का जो अनन भक्त है उसकी सारी चेष्टा भगवान के लिए होती है। ये साधन काल की बात है कि भगवान के लिए जो चेष्टा करता है, हर वक्त भगवान को अपने सन्मुख देखता है और उनके संकेत की माफक ऐसी चेष्टा करता है, उनके मन की माफक चेष्टा करता है, उनके हुक्म की माफक, उनके सिद्धांत की माफक साधन काल में चेष्टा करता है, और सिद्ध काल के में अपने आप वैसी चेष्टा होती है, वो करना होने में बदल जाता है। तो केवल भगवत्तर से कर्म करने से भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान कहते हैं मगत विकर्माणी कुरुण सिद्धि मुमापिषति, मेरे कर्म करता हुआ भी मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। गीता की 12वीं अध्याय के 10 के श्लोक में बतला है। जिसको हम लोग भगवत अर्थकर्म कहते हैं, भगवान अपने मुख से कहते हैं वो मदर्थ कर्म। भगवान को देखता रहता है कि भगवान किससे संतुष्ट है, जिससे भगवान संतुष्ट होते वही कर्म करता है। भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के हुक्म के मापक और भगवान के लिए अपना कोई भी उसमें समझ नहीं, प्रयोजन नहीं, जिनकी सारी चेष्टा जो है सो भगवान के लिए है, उसको भगवान कहते हैं मत करूं के लिए और मत परम। जो भगवान पर निर्भर है, भगवान के एक प्रायण है, भगवान का एक आसरा है, केवल भगवान के शरण होने से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती। मांग ही पार विपाशित ये पिशु पापी योनिया स्त्रियों वैश्ता चेती अंति प्राण हे पार्थ, मेरी शरण होकर के स्त्री होती चाहे वैश्य हो चाहे सुदूर हो और चाहे पापी होनी चंडाल आदि भी क्यों नहीं हो, वे भी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं केवल भगवान की शरण। वासुदेव सर्व मृत्यु वासुदेव परायण सर्व पाप विशुद्ध आत्मा याची ब्रह्म सनातन अनुशासन पर्व के 149 की अध्याय के 130 के श्लोक में भगवान कहते हैं कि माने यहां जो भगवान ने कहा वो उस जगह के मां भीष्म जी ने राजा युधिष्ठिर को कहा है कि भगवान का ये कहना है। वो भीष्म जी कहते हैं कि जो वासुदेव के ही शरण है, मैं कहीं आश्रित है, वे सारे पापों से मुक्त होकर के सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो इसी प्रकार से भगवान के ऊपर निर्भर हो जाना, भगवान की शरण हो जाना, जैसे बालक है, छोटा बालक माँ के ऊपर निर्भर रहता है, ऐसे भगवान के ऊपर निर्भर होना, जैसे प्रहलाद भक्त भगवान पर निर्भर रहते थे, कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं, तो सब प्रकार से भगवान उसकी रक्षा करते थे। तो भगवान की जो शरण हो जाता है उसी के प्राण हो जाता है, और जो कुछ भगवान करते हैं उसमें भगवान के विधान में मंगलमय विधान के वहां आनंद का ही अनुभव करता है, भगवान की दया का ही अनुभव करता है, उस भक्त को भगवान कहते हैं मत परम, वे मेरे प्रायण है। और मत भक्त जो भगवान का ही भक्त, भगवान के स्वभाव किसी में जय की प्रीति नहीं, भक्ति नहीं, प्रेम नहीं, केवल भगवान के मां प्रेम है, वही अनंत भक्ति है, विशुद्ध प्रेम है, विशुद्ध भक्ति है। भगवान के मां ही आसक्ति है, प्रीति है, ममता है, और भगवान की मिलने की उत्कट इच्छा है, उसके लिए भगवान का मत भक्त है। ये तीन बात जो है धारण करने के लिए कही, और दो बात निषेध के लिए। संग वर्जित है, संग माने आसक्ति से रहित, संसार के मां आसक्ति से रहित, संसार के मां प्रीति से रहित, संसार के किसी पदार्थ में जिसकी प्रीति नहीं, स्त्री में, पुत्र में, धन में, रुपया में, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा में, इस लोक में, परलोक में, स्वर्ग में, कहीं किंचित मात्र जिसकी कहीं प्रीति नहीं, उसको कहते हैं कि जो संसार में आसक्ति से रहित, प्रेम से रहित, इसी प्रकार से मैं बैर से भी रहित, निर्वीर सर्वभूतेषु, सारे भूतों में जो बैर भाव से रहित है, किसी के मां द्वेष नहीं, बैर नहीं, ईर्ष्या नहीं, किंचित मात्र भी जिसके बीच के मां ऐसी वृत्ति नहीं, उसको सारे भूतों में बैर से रहित पता अर्जुन, ऐसा जो मेरा भक्त है वो मुझको प्राप्त होता है, इसका फल भगवान की प्राप्ति। तो ये भक्ति का विषय आपको कहा गया। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। महानम अचंताम पूर्णानम आनंदियाम आनंदियाम शांति शांति शांति।
निष्काम सेवा और प्रेम लक्षणा भक्ति से भगवान की प्राप्ति विषयक प्रवचन पूज्य श्री जयदयाल जी गोविंद का द्वारा आज मिति श्रावण कृष्णादशमी प्रातः 8 बजे बार शनिवार संवत 2018 तदनुसार तारीख 5 अगस्त 1961 को सामान्य श्री घनश्याम दास जी जालान के घर पर गोरखपुर में दिया गया।
शीघ्र से शीघ्र कल्याण कैसे हो इस विषय में आपको एक बात बतलाई जाती है, उसमें एक पैसों को खर्च दे और काम भी बहुत सुगम है और परमात्मा की प्राप्ति निश्चय हो, इसमें कोई शंका की बात नहीं। उसमें सबको अधिकार है, हम जितने हैं सब कोई कर सकते हैं, किसी के लिए भी कोई कठिन बात नहीं। तो वह बात यह है कि हर वक्त भगवान ने याद रखो, हर वक्त भगवान ने याद रखो। अनुचेता सततम युवांग समृति नित्य सत्यांग सुलभ पार्थ नित्य युक्त संयोगी नीता की 8वें अध्याय का ये 14वां श्लोक है। इसको अर्थ जो है कि मनुष्य अनन्य चित्त हुआ, नित्य निरंतर जो मेरा स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर चिंतन करने वाले योगी के लिए मैं सुलभ हूं, यानी सहज में उसको प्राप्त हो जाता हूं, यह बात भगवान कहती। यह भगवान की घोषणा है, प्रतिज्ञा है। तो इसलिए हम लोगों को हर वक्त भगवान को याद रखना चाहिए। लाख काम छोड़ करके और इस काम में गलती नहीं करूंगी। कहीं भूल गए तो भारी जोखिम का काम है, क्योंकि जिस वक्त में हम भूल गए भगवान को, संसार का चिंतन करने लग गए, तो बस एक प्रकार से थी। प्रथम तो हमारी वही गति होगी जो चिंतन करते हुए मरे, क्योंकि यम वापी समभाव त्यज तन थे कलेवरम तंग तमे भी तिकोणते है सदा तद भाव भावित। भगवान ने गीता की 8वें अध्याय के 6वें श्लोक में यह बात कही है कि मनुष्य जिस जिस भाव को याद करता हुआ देखो जाकर जाता है, सदा उस भाव को भावता हुआ उसी को प्राप्त हो जाता है। यानी पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य देवता पितृ जिस स्वरूप को याद करता हुआ जावा उसी को प्राप्त हो जाता। तो हम एक प्रकार से समझो कि मरने के समय में भगवान को छोड़कर यदि दूसरी वस्तु का दूसरी किसी प्राणी का चिंतन करते हुए मरे तो फिर हमारी निश्चय दुर्गति। तो इसलिए तस्मा सर्वेशु कालेषु मा मनुष्य, भगवान कहे इस वास्ते तू सब समय के मां मन याद कर। तू अशो मुको ही क्यों देने काल ने या मृत्यु ने जो आकर के तुमको मारने वाले हैं, तुम हर समय मेरा आश्रय लेकर के रहो, मेरी शरण लेकर के रखो। इसमें सबको अधिकार है, यही शरण असली भगवान को याद रखनो, यही असली शरण। मां ही पार्थ पास ये शु पाप योनि सुयो वैश्ता सता शूद्रा से भी प्राण गति। हे पार्थ मेरी शरण लेकर की स्त्री होती वैश्य हो, शूद्र हो, अथवा पापियों ने चंडाल आदि भी क्यों नहीं हो, वे भी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो शरण क्या है इसके लिए आगे जाकर के भगवान चार बात कहते हैं। ये गीता की 9:32 का श्लोक है और 34 के श्लोक में कहते हैं कि मन मना भव मत भक्तो मध्या जी मांगना उसको, अर्जुन तू मुझ में मन को लगा दे, मेरे में प्रेम कर, मेरी पूजा कर, मेरे को नमस्कार कर। ये चार बात के बीच में एक सबसे बलवान है कि हर वक्त भगवान को याद रखना। भगवान के मां अनन्य और विशुद्ध प्रेम होने से ही भगवान हर वक्त याद रह सकते हैं। तो प्रेम तो उसकी अंतर्गत ही है। अथवा भगवान के मां हमारा अनन्य और विशुद्ध प्रेम हो जाए तो भगवान की स्मृति अपने आप ही निरंतर होती है। इसलिए भगवान में प्रीति और भगवान में चित्त की वृत्ति, ये दोनों चीज एक साथ ही रहे। जहाँ अनन्य चिंतन भगवान का होता है वहाँ प्रेम अवश्य होता है, और जहाँ भगवान के वहाँ अनन्य प्रेम होता है वहाँ भगवान की स्मृति अवश्य होती है। ये दिखाया भी इसी ध्याय के मां अनन्या चिंतन तो मांग ये जना पूरी उपास थे तेसा नित्या युवता नांग युगक्षेम बहामे हम। ये गीता की 9:22 का शुरू, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं और अनन्य भाव से चिंतन करते हुए जो मेरी उपासना करते हैं, मेरी जो भक्ति करते हैं या मुझको जो भजते हैं, उसके लिए मैं योगक्षेम बहन करता हूं। यह बात भगवान कहते हैं। अप्राप्ति की प्राप्ति का नाम योग है और प्राप्ति की रक्षा का नाम क्षेम है। जितना उसका साधन हो चुका उसकी तो मैं रक्षा करता हूँ और जो बाकी उसकी पूर्ति करता हूँ। आज तो अनंत जन्मों से जिसकी प्राप्ति नहीं हुई है उसे परम पद की प्राप्ति करा देता हूँ। ये समझो कि भगवत प्राप्ति रूप जो योग है उसकी भगवान पूर्ति कर देती। तो इन सब बातों को ख्याल में रख करके लाख काम छोड़ करके हर वक्त हमको याद, हर वक्त हमारे कर्तव्य की भगवान को हर वक्त याद करना चाहिए। भगवान से बढ़कर कोई चीज है ही नहीं। भगवान के समान कोई गुणी नहीं है, भगवान के समान कोई प्रभावशाली नहीं है, भगवान के जैसा किसी का स्वभाव नहीं है। तो ऐसे भगवान को छोड़कर के संसार के विषय भोगों के मां जो भ्रमण करता है वो तो समझो कि कीचड़ में फंस करके अपने जीवन को नष्ट करता है। वो तो शिशक शिशक कर मरता है, जैसे कीचड़ में दलदल में फंसी हुई घास हो समझो कि तरफ तरफ करके मरे, जैसे पानी के बिना मछली तरफ तरफ करके मरे। इस प्रकार से भी बंकी बा मृत्यु तो है। इसमें प्रत्यक्ष में आनंद है। साधन काल के मां चित्त में प्रसन्नता